پریمیئر ہیں فورڈ وہ بہت خائف ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کیوں 34 کوٹ ان کوٹس میں آفٹر دس از اوور وی نیڈ ٹو ریویو اٹ اینڈ اسٹارٹ لکنگ ایٹ دا البرٹا ماڈل. اٹس اے لاٹ ایزیئر ٹو ہیو ون پرسن ٹو کنٹرول دین 34 پیپل ٹو کنٹرول. یعنی اس کا مطلب ہے اونٹیریو میں 34 لوگ کون ہیں. سمینہ السلام علیکم, ہاؤ آر یو ٹوڈے؟
جی السلام علیکم آپا, السلام علیکم آجی بھائی, خیریت سے ہیں جی, اللہ کا شکر.
ماشاء اللہ سمینہ ہیز انجوائڈ آل دا سینئر پوزیشنز ان دی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, اینڈ اب سمینہ مجھے اور آپ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے ان ریڈ کراس ایز اے وائس پریزیڈنٹ ریڈ کراس ان آنٹیریو. سمینہ لین کے ساتھ بھی آپ تعلق رہی ہیں, اور جب تک کنزرویٹیوز نہیں آئے دے ور آلویز اگینسٹ کہ لین جو ہے یہاں پہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے, تھرڈ پارٹیز میں پیسہ ضائع ہو رہا ہے, اور یقیناً دے اینڈڈ اپ سیونگ سم منی. اس وقت جو پریزیڈنٹ ہمارے جو پریمیئر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو البرٹا کا ماڈل ہے وہاں پہ ایک باڈی ریپرزینٹ کرتی ہے, ویئر ایز ان اونٹیریو 34 پیپل ان کنٹرول. تھوڑا بتائیں گی آپ ہمیں اس کے بارے میں؟
جی ضرور آپا, 34 جو آپ بات کر رہی ہیں نا وہ ہیں 34 ریجنل میونسپل سسٹمز آف پبلک ہیلتھ. جو ہمارا اونٹیریو کا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ ایک زمانے میں ڈیسینٹرلائزڈ ہوتا تھا, اور اس میں دے ور 43 ڈفرینٹ ریجنز. ان کو سینٹرلائز کرنے کے لیے لنز کو انسٹیٹیوٹ کیا گیا تھا 2006 میں, اور 14 لنز بنائے گئے تھے جو کہ اونٹیریو کو 14 ڈفرینٹ ریجنز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا تھا ٹو سینٹرلائز آر سروس ڈلیوری, ہاسپٹل سسٹمز کی, لانگ ٹرم کیئر کی اور کمیونٹی کیئر کی. اور مگر سب سے بڑا المیہ یہ تھا لنز کا کہ میونسپل جو ہیلتھ ہے, جو آپ کا پبلک ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے ہر میونسپیلٹی کا, وہ لنز کے انڈر نہیں آتا تھا. اب جب کہ گورنمنٹ نے, کنزرویٹیوز نے آنے کے بعد ٹیکنیکلی سپیکنگ لنز کو بھی بند کیا اور سی سی اے سیز کو بھی بند کیا, اور اونٹیریو ہیلتھ ٹیمز بنا رہے ہیں, ابھی بھی سب سے بڑا جو مسئلہ جس کے یہ ہنٹ کر رہا ہے فورڈ اب, وہ یہ ہے کہ پبلک ہیلتھ کا جو سسٹم ہے وہ ابھی بھی ان سینٹرلائز باڈیز کے انڈر نہیں آتا. اس کی فنڈنگ فرق ہے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی فرق ہے, اور اس کی آپریشنز فرق ہیں. اب کووڈ کے لحاظ سے جتنی ٹیسٹنگ ہے وہ پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹس ریسپانسبلی کرتے ہیں, کیونکہ جو کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں وہ پبلک ہیلتھ کے انڈر آتی ہیں, صرف ہاسپٹل سسٹم یا کمیونٹی سسٹم کے انڈر نہیں آتی ہیں. اس لیے یہ پرابلم جو دیکھنے میں آ رہی ہے کہ دیر 34 ڈفرنٹ پبلک ہیلتھ میونسپل پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹس جن کو یہ بات کر رہے ہیں, اور ان کی کوآرڈینیشن میں پرابلمز آ رہی ہیں بیکاز وہ 34 ہیں. جو البرٹا کے ہیلتھ سسٹم کی یہ ماڈل کی بات کر رہے ہیں, پورے البرٹا کے اندر ایک ہیلتھ سسٹم ہے, اور وہی ہیلتھ سسٹم سارے ڈفرنٹ ایریاز آف ہیلتھ کو کور کرتا ہے, چاہے وہ ہاسپٹل ہو, کمیونٹی ہو یا پبلک ہیلتھ ہو. تو دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین دی اونٹیریو ہیلتھ ماڈل اینڈ البرٹا ہیلتھ ماڈل.
بہت اچھے طریقے سے سمینہ آپ نے ایکسپلین کیا, مگر آپ نے لین کے ساتھ بھی کام کیا. آئی بینگ این آؤٹ سائڈر وداؤٹ, میرا کسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے, لیو ان کینیڈا, اور میں آئی جسٹ وانٹ ٹو سی کہ واٹ از ان اٹ فار دی ریزیڈنٹس اینڈ اس ملک کے باشندہ ہونے کے ناطے ہمارے لیے کیا ہے. تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ اتنی سن شائن لسٹ آیا کرتی ہوتی تھی, یعنی سی سی اے سیز کو ختم کر دیا, لنز کو ختم کر دیا, تو وہ جو دو دو تین تین چار چار ڈائریکٹر ڈفرینٹ کمپنیوں کے ہوتے تھے, ان کی سیلریز کو ختم کرنے کے بعد میرا تو خیال ہے کہ انہوں نے صحیح کام ہی کیا.
آپ دیکھیے, جو بات ایک ہوتی ہے ایک پالیسی کی امپلیمنٹیشن کی اور ایک پالیسی کی ایکسیکیوشن کی. جہاں تک آتی ہے یہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ جو آتی ہے, وہ دیکھنے والے کو, پبلک کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ سسٹم میں کیسے ابزارب ہو جاتی ہے. ٹیکنیکلی اسپیکنگ لنز کا جو ہائر ایڈمنسٹریشن یا سی سی اے سیز کا ہائر ایڈمنسٹریشن ہے, اس کی تھوڑی بہت امالگمیشن کی گئی ہے, مگر انٹائرلی اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں بیکاز اس کی جو ایکسیکیوشن ہے کمیونٹی لیول پہ وہ کسی نہ کسی کو تو کرنی ہے. مگر تھوڑی بہت کاسٹ سیونگ ہوتی ہے और कॉस्ट सेविंग तो आप जो सनशाइन लिस्ट की बात करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द नर्सेज इन अ हॉस्पिटल सिस्टम आर ऑन अ सनशाइन लिस्ट. नर्सेज आर हाईली पेड, नर्स प्रैक्टिशनर्स आर हाईली पेड. सो जो मैनेजमेंट आ जाती है वो डायरेक्टर लेवल के बियॉन्ड यूजुअली 100,000 के ऊपर होती है. इसलिए द नंबर ऑफ पीपल ऑन अ सनशाइन लिस्ट आर कंसिडर्ड टू बी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो कि एक्सिक्यूट करते हैं ऑपरेशंस को. मगर जहां तक अब उन्होंने किया है कि ऑन्टेरियो हेल्थ टीम्स को बनाया जा रहा है, वो चीज थोड़े बहुत फर्क होगी बिकॉज फर्दर अमेलगमेशन हो रही है ऑफ हाउ अ रीजन विल बी स्ट्रक्चर्ड. अगर पहले 43 CCACs होते थे, फिर उनको 14 CCACs किया अलाइन करने के लिए 14 लिंस के साथ, और अब ऑन्टेरियो हेल्थ टीम्स बन रही हैं, उनकी अभी ज्योग्राफिक जो असाइनमेंट है वो नहीं हुई है. सो वी एक्चुअली डोंट नो कि कितनी ओवरऑल ऑन्टेरियो हेल्थ टीम्स होंगी, मगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को आप अबॉलिश नहीं कर सकेंगे कभी भी.
मगर ये सिस्टम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अल्बर्टा में तो नहीं है ना?
आपा अल्बर्टा का नहीं है. सो अल्बर्टा पहले सेंट्रलाइज होता था, फिर उसको कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज कर दिया और फिर से उसको दोबारा सेंट्रलाइज कर दिया. प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप सेंट्रलाइज करोगे तो लोकल कम्युनिटी कहेगी कि यू आर नॉट मीटिंग आवर लोकल नीड्स. जब आप लोकल नीड्स को फोकस करना चाहते हो, यू हैव टू स्टार्ट डिसेंट्रलाइजिंग, बिकॉज टोरंटो में बैठे हुए आप किंगस्टन के लिए प्लानिंग नहीं कर सकते हो, बैरी में बैठे हुए आप इटोबेको के लिए प्लानिंग नहीं कर सकते हो. सो सम एलिमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन हैज टू बी देयर. होपफुली जो इन्होंने कोशिश की थी लिंस के अंडर, वो हॉस्पिटल, लॉन्ग टर्म केयर, मेंटल हेल्थ और कम्युनिटी सेक्टर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की थी अंडर वन लेन. प्रॉब्लम वह आती है जहां पे गवर्नेंस होती है. हॉस्पिटल का अपना बोर्ड अलग से गवर्न करता है, आप उसको लेन के बोर्ड के अंदर नहीं ला सकते हो. कम्युनिटी, हर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन का अपना कम्युनिटी बोर्ड होता है. अल्बर्टा में बहुत बड़ी इन्होंने चीज की थी, इन्होंने गवर्नेंस स्ट्रक्चर को बदला था. जब तक गवर्नेंस स्ट्रक्चर को ये चेंज नहीं कर पाएंगे तो उस की इम्प्लीमेंटेशन की जो अकाउंटेबिलिटी है वो गवर्नमेंट के हाथ में बहुत मुश्किल हो जाती है.
बहुत शुक्रिया. अल्बर्टा में भी कंजर्वेटिव्स रूल कर रहे हैं और देखिए मेरा ख्याल. मगर मेरा लास्ट क्वेश्चन जो समीना आपसे, हमारे जमाल ने भी शायद कोई सवाल करना होगा. बहुत शुक्रिया, यू टुक माय टाइम, हालांकि आप अपनी मीटिंग में थी. मगर मेरा आखिरी सवाल जो आपसे है वो ये है कि यहाँ पर अगर आप किसी लैब में जाते हैं तो ऑल द लैब्स आर पेड बाय द सिस्टम पर टेस्ट, ठीक है, जितने टेस्ट होते जाते हैं उसके लिहाज से. अब ये जो 34 बॉडीज़ हैं जो कि रीजनल म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं, जब ये लोगों का कोविड के टेस्ट कर रही हैं, से 17,000 जिसने कर दिए, तो दे विल बी पेड हायर, या उनको उनका कोई कंसर्न नहीं है इन नंबर ऑफ टेस्ट के साथ?
आपा, आई एम ऑनेस्टली आई डोंट नो कि इस वक्त सिस्टम क्या है. इज इट पे पर टेस्ट जो कि प्राइवेट कंपनीज को दिया जा रहा है, या गवर्नमेंट के अपने जो इंस्टीट्यूशंस लेबोरेटरीज हैं वो प्राइमरीली टेस्टिंग कर रही हैं? बट इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मोर मनी यू गिव द मोर टेस्टिंग दे हैव टू डू. यू हैव टू लुक एट द कंप्लायंस एंड द ट्रेनिंग एंड द अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट जिसके बेसिस पे आप टेस्टिंग कर सकते हैं. तो जहां पे अगर आपके ट्रेंड लेबोरेटरी टेक्नीशियंस अवेलेबल जितने होंगे अगर एक सिस्टम के अंदर, उसको वो लोग डिवाइड कर सकेंगे बाय द नंबर ऑफ टेस्ट दैट यू कैन पॉसिबली डू.
थैंक यू.
अब और क्या मसले मसाइल हैं जिनकी बेसिस पे सर्टन पब्लिक हेल्थ यूनिट्स ज्यादा टेस्टिंग कर पा रहे हैं, सर्टन कम कर पा रहे हैं? इट इज ऑल्सो वर्क फोर्स. राइट नाउ हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में जो वर्क फोर्स का इश्यू है वो इतना सवेयर है बिकॉज लोग अपने हेल्थ केयर सिस्टम में बीमार पड़ रहे हैं. सो फ्रॉम द वर्क दैट आई डू, उसके लिहाज से इस वक्त क्वेबेक में और बीसी में हमने अपने जो रेड क्रॉस के फील्ड हॉस्पिटल्स हैं हम उनको डिप्लॉय कर रहे हैं ताकि जो करंट सिस्टम की कैपेसिटी है हम उसको ऑगमेंट कर सकें.
अल्हम्दुलिल्लाह वो स्पाइक इज गॉन नाउ और किसी हद तक के इस कर्व फ्लैटेंड है. नाउ रेस्ट इज अप टू अस के प्लीज कीप द सेफ डिस्टेंस मिनिमम टू मीटर्स का. अननेसेसरी बाहर ना निकलें, निकलें तो आप प्रिकॉशनरी मेयर्स को अपने साथ रखें. बहुत शुक्रिया समीना, आप थैंक यू वेरी मच.
थैंक यू जी.
Because she knows the system very well. हमारे जो प्रीमियर हैं फोर्ड वो बड़े सख्त खफा हैं. उन्होंने कहा यू हैव हाफ ऑफ देम रियली एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस एंड देन यू हैव सम अदर्स दैट आर नॉट इवन पुटिंग द वर्क इन फॉर. यानी कुछ लोग तो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो काम करके राजी नहीं हैं. उन्होंने ये कहा कि मैं उनको पिन पॉइंट नहीं करूँगा, ठीक है. और फोर्ड said his team will be speaking to the officials. They know who, jin kin officers ke bare mein baat kar rahe hain aur unki team jo hai officials in the region that are underperforming over the next day or two. unko do din ka yani unke kaanon mein se baat nikal di hamare premier Ford ne. unne kaha unko pata hai jinke bare mein baat kar raha hu. agle do din mein hum unki performance ko dekhenge aur phir meri team unse baat karegi. unhone kaha ki I am disappointed in the chief medical office in the certain regions. I am not going to name them. they know who they are. chaliye sahab sun rahe hain aap program Saaz Awaaz mein aapke sath Arif Hamzafar. ji ma ji
टॉप ऑफ द आवर 11 मिनट देर हो गई हमें ओके एंड हम चलते हैं अब टॉप ऑफ द आवर स्पॉन्सर्स के पैगाम की जाने 416-620-1778 हमारा फोन नंबर है.
डाइवोर्स या कस्टडी की लड़ाई जिंदगी की सब तो औखी लड़ाई होंगी है क्योंकि तुसी उस शख्स ना लड़ रहे होंगे हो जिसना थोड़ा घर परिवार ते थोड़े बच्चे सांझे ने. उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नु मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे.
SNS लॉयर्स को इन्हां सारे सवालों दे जवाब ते थोड़े हक ले लड़न वास्ते लियाकत है. अपने हक जानन ले या सलाह लेन ले आज ही SNS लॉयर्स नु कॉल करो 416-655-2000.
हुकूमत अंटेरियो का ऐलान, हमारी एहतियातें और कोशिशें बेहतरी ला रही हैं. दरमियान में फासला और मेल मिलाप की दूरी, ये एहतियात कारगर साबित हुई है. इस वक्त लाजिम है हिम्मत नहीं हारनी, इस मुझी बीमारी को बढ़ने से रोकना है. अगर सफर बहुत जरूरी है अपने और मुसाफिरों के दरमियान 2 मीटर का फासला रखें. अपने दोस्तों खानदान के अफराद और कम्युनिटी को खतरे से बचाइए, साथ दीजिए. ज्यादा वक्त घर पे गुजारें, हिम्मत न हारें, मजबूत रहें, फर्ज निभाएं. मालूमात के लिए ontario.ca/coronavirus. इश्तेहार मुंजानिब, हुकूमत अंटारियो.
थैंक यू ऑल आवर डॉक्टर्स,
थैंक यू ऑल आवर नर्सेस,
थैंक यू ऑल आवर पैरामेडिक्स,
थैंक यू ऑल आवर पुलिस फोर्स,
थैंक यू ऑल आवर फ्रंटलाइन वर्कर्स.
Muslim Welfare Canada has made a concerted effort to lead the fight against child labor, poverty, and illiteracy in third world countries. Through the generous support of our donors, over 400 children, both girls and boys, receive free, good quality education. Help educate a needy child for just $1 a day or $30 per month. Donate generously. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
आप कनाडा से पाकिस्तान पैसे भिजवाना चाहते हैं और वो भी फौरन जबरदस्त रेट्स के साथ और आराम से घर बैठे, आपको ये सब मिलेगा बगैर कॉम्प्रोमाइज के. अभी डाउनलोड कीजिए Zoom मनी ट्रांसफर ऐप फ्रॉम PayPal,
दैट्स XOOM Zoom,
और अपने मोबाइल से पैसे भेजिए अमेजिंग एक्सचेंज रेट्स के साथ. बैंक डिपॉजिट्स, कैश पिकअप या मोबाइल रिचार्ज, अब पाकिस्तान पैसे भेजें उंगली के इशारे से. Zoom, a PayPal service. तेज, आसान और महफूज मनी ट्रांसफर.
वालिया ट्रैफिक लीगल सर्विसेज से जनाब RS वालिया.
केयरलेस ड्राइविंग,
स्पीडिंग या फिर एक्सीडेंट,
फेल टू रिमेन स्टॉप एट द सीन,
रेड लाइट्स या फिर सीट बेल्ट्स,
परमिट ड्राइव विदाउट इंश्योरेंस,
रेसिंग, स्टूडेंट ड्राइविंग या फिर कॉट वाइल यूजिंग फोन,
स्पीडिंग,
RS वालिया आपकी टिकट से निजात दिलवाएंगे और आपके पॉइंट्स भी सेव करेंगे. 9054542112 4542112.
कर्जे से निजात के लिए एक ही नाम, मोहम्मद सिद्दीक, ऑल द सॉल्यूशन, पुरसकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा.
मोहम्मद सिद्दीक ऑल डेट सॉल्यूशन बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी कंसोलिडेशन करते हैं अप टू 80%। मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं। पुरसकून जिंदगी, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन। अपनी जिंदगी को पुरसकून करने के लिए, कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक 416-671-0577। सोना यानी गोल्ड खरीदना या बेचना है तो एक काबिल एतमाद नाम रूबी ज्वेलर्स याद रखिएगा। असलम या इकराम भाई से मुलाकात कीजिएगा। हाथ के बने हुए या मशीनी जेवरात, इतनी वैरायटी है चूड़ियों और करों में, चेन्स में। आप सोने की खरीदारी के लिए एक बा एतमाद नाम रूबी ज्वेलर्स विजिट जरूर कीजिएगा। प्रोग्राम का रेफरेंस देंगे तो डिस्काउंट भी है और सोने की रिपेयर कोई चार्ज नहीं। रूबी ज्वेलर्स 7086 एयरपोर्ट रोड मॉल्टन में। रूबी ज्वेलर्स
एशियन फूड सेंटर 905-793-1338। आपके किचन की तमाम जरूरियात एक ही छत तले। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज एंड स्टेबल्स, ब्रेड डेयरी एंड एग, बेवरेज एंड कन्फेक्शनरी, ब्रांडेड फूड्स, पर्सनल केयर एंड हाउसहोल्ड, स्वीट्स एंड समोसास। Order now for in-store free pickup 905-793-1338. Home delivery is also available. Asian Food Center 905-793-1338. Asian Food Center.
जी साहब, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहना चाहती हूँ आपको। और मैंने आपसे जैसे कहा ना कि आज हम 100 साल के बाद जब जिक्र कर रहे हैं, तो कोविड 19 का जब जिक्र कर रहे हैं, तो इट इज़ एग्जैक्टली सेम जो कि स्पेनिश फ्लू का था। इट्स अ बहुत बड़ा आर्टिकल है। और मैं बल्कि उसमें आपको बता रही थी, उस वक्त जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे ना, उन्होंने भी इस बीमारी का बल्कि वो शिकार भी हुए थे, और उन्होंने भी बर वक्त इकदाम नहीं किए थे। 1918 में द सर्जन जनरल नोटेड, उस वक्त के जो जनरल थे, उन्होंने एक हैंड बिल के ऊपर लिखा था, अ पर्सन हु हैज ओनली अ माइल्ड अटैक ऑफ द डिजीज हिमसेल्फ मे गिव अ वेरी सिवियर अटैक टू द अदर। उन्होंने जो उस वक्त 1918 की बात है, सर्जन जनरल, उसने हैंड बिल के ऊपर ये पैगाम लिखा था। और आज भी आप देख लीजिए कि जी क्या है कि जिस शख्स को भी माइल्ड अटैक है इज़ अ कैरियर, और वो ये जरासीम जो है अपनी आवाज़ में, अपने बोलने में, अपने छींकने में दूसरों तक ट्रांसफ़र करता है। द वार्निंग इज जस्ट एज एप्लीकेबल ऑन द कोरोना वायरस स्पेशली एज द साइंटिस्ट लर्न लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद द कोविड 19 में स्प्रेड डिस्पाइट। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कि कैरियर हैं, जिनको पता भी नहीं कि वो कैरियर हैं कोविड 19 के, एंड दे आर स्प्रेडिंग। एग्जैक्टली हाउ ऑफन द न्यू वायरस किल्स कैन बी डिटरमिन्ड विदाउट बेटर काउंट ऑफ इन्फेक्टेड। सम एस्टिमेटेड पुट दैट 1918 फ्लूज डेथ रेट वॉज 2.5% स्पेनिश फ्लू का, मगर देखिए मिलियंस में डेथ हुई थी। कितनी आबादी थी? मेरा ख्याल अल्लाह ताला ने आखिर आबादी को भी तो कंट्रोल करना होता है। आई टेक यू कि उस वक्त के प्रेसिडेंट, 27th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, हाउ ही बिहेव्ड दैट टाइम टुवर्ड्स द सिकनेस। मैं उस चीज़ को कवर करूँगी, मगर उससे पहले एक मुलाकात। बहुत शुक्रिया हमारे इन तमाम स्पॉन्सर्स का, जो इस काबिल करते हैं कि प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश कर सकें। एक बात याद रखिएगा, टू हैव बेस्ट अकाउंटेंट, टू हैव बेस्ट लॉयर एंड टू हैव बेस्ट डॉक्टर, दैट डेफिनेटली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, और ख़ास तौर पर इस सिस्टम में जिसमें मैं और आप रह रहे हैं। वी आर लकी टू बी इन दिस सिस्टम, कि अगर आपको कोई हरास करता है, यू हैव टू हैव द बेस्ट लॉयर। अगर आपने, आप पास अच्छा लॉयर है, तो यकीनन आपको कहीं से भी बचा के लेके निकल सकता है। अगर आपका डॉक्टर अच्छा है, तो यकीनन आपकी रिपोर्ट मेडिकल की बेहतरीन तैयार हो सकती है। एंड इफ योर अकाउंटेंट इज गुड, देन यू कैन बी डोनाल्ड ट्रंप।
देखिए कितनी मुश्किलात से हम यहाँ से गुजरते हैं इन मुल्कों में जो सिविलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पर आप कहती हैं बेस्ट लॉयर होना चाहिए, बेस्ट डॉक्टर होना चाहिए, बेस्ट अकाउंटेंट होना चाहिए। पाकिस्तान के लोगों का जवाब नहीं, एक पॉलिटिशियन को जानते हैं, सारे काम आसान हो गए। सैयद साहब मेरे साथ हैं, दो सैयद, दोनों सैयदों के बीच में फंसा हुआ हूँ मैं। एक सैयद अली हैं, वो सैयद अली अकाउंटेंट है, उनसे पहले बात करेंगे, फिर सैयद तौसीफ हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, और इस बात पे ज़रूर बात करेंगे। अगर एक पॉलिटिशियन उनका दोस्त है, तो भाई किसी को कहना आने की ज़रूरत नहीं है।
अच्छा चलिए फिर ठीक है। सैयद अली से मैं आपकी बात कराती हूँ। आपको पता है कि मैं कोविड 19 की आज बात करती चली जा रही हूँ, और मैं स्पेनिश फ्लू की भी बात कर रही हूँ। इस वक्त के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनके परदादा को स्पेनिश फ्लू हुआ था।
ओह, आई डिडंट नो दैट।
यस, इनके परदादों को स्पेशल हुआ था, उस वक्त के जो 27th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे उनको हुआ था. एंड उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बिहेव्ड एंड रिएक्टेड एग्जैक्टली सेम वे एज डोनाल्ड ट्रंप रिएक्टेड टूवर्ड्स दिस सिकनेस. बट विल टॉक अबाउट ऑल दिस. 100 साल पहले टेक्नोलॉजी क्या थी, आज टेक्नोलॉजी क्या है, मगर उसके असरात बिल्कुल एक जैसे ही हैं. अली सैयद से आपकी मुलाकात कराती हूँ. चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, वेरी लर्नड, वेरी फाइन, एंड ही कैन हेल्प यू टू गेट दीज इमरजेंसी बेनिफिट्स. ऑफ कोर्स यू कैन अप्लाई योर सेल्फ, बट यू नो अकाउंटेंट्स जो हैं जिसका काम उसी को साझे. नंबर आपको मैं दे देती हूँ, 6477861216 786 1216 786 1216 उनका नंबर है. अली सैयद अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम असलम, क्या हाल चाल है आपका?
मैं चंदा ठीक हूँ, तुम कैसे हो?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आपने एक गलती कर दी, आप पहले कह रही थी कि आप 27th प्रेसिडेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे या उनसे बात करेंगे, फिर आपने मुझे अभी अकाउंटेंट कह के आपने अभी ना मुझे 27th प्रेसिडेंट भी कह सकती थी.
अच्छा अली सैयद, मैं आपसे ये सवाल कर लेता हूँ. ओके कि अब हम तो कनाडा में कहते हैं अच्छा अकाउंटेंट, अच्छा डॉक्टर, अच्छा लॉयर, मगर पाकिस्तान में अगर सिर्फ एक पॉलिटिशियन को जानते हैं तो फिर एकदम आपके सारे काम आसान हो गए. सही है गलत है?
हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. इसका हम जो सारे यहाँ पे हैं इसका मतलब है कि हम किसी पॉलिटिशियन को नहीं जानते थे.
You got it.
तो फिर हम इधर आ गए और अब यहाँ आके अच्छा है किसी अच्छे अकाउंटेंट को जाने, किसी अच्छे लॉयर को जाने, अच्छे डॉक्टर को जाने, कोई भी प्रोफेशनल हो उसको जाने. आई मीन आप अच्छे शेफ को जाने अगर आपने अच्छे रेस्टोरेंट में जाना है, आप अच्छे ड्राइवर को जाने अगर आपने अच्छा कोई अपना डिलीवरी वगैरह करानी है, डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, डेंटिस्ट. तो जो भी प्रोफेशनल होता है क्योंकि उसने टाइम लगाया होता है अपनी प्रोफेशन में. जैसे रेडियो, आप लोग रेडियो कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास वो एबिलिटीज नहीं है कि आवर को इतनी ज्यादा बात करना, इतने टॉपिक्स को इंटरेस्ट रखना. तो ये एक प्रोफेशनल का काम है. इसी तरह बिजनेस में, अकाउंटिंग में एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. हम लोग पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं, लिमिटेशंस उनके ऊपर पढ़ते हैं. आजकल जिस तरह बहुत ज्यादा लोग कॉल कर रहे हैं जिन्होंने लोन तो ले लिया 40,000 का, मगर अब लिमिटेशन जब उसकी पड़ी कि उसके ऊपर आपने किस तरह उसको स्पेंड करना है, गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं उसके ऊपर कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या चीजें नहीं कर सकते. तो अब अक्सर लोग परेशान है कि उन्होंने ले तो लिया है, वो क्या करें, इसको वापस करें या क्या ना करें. तो अच्छा अकाउंटेंट जब होता है तो आपको इस तरह के डिसीजन लेने से पहले एटलीस्ट आपको सरप्राइजेस नहीं मिलते. एंटरप्रेन्योर्स अपने डिसीजन खुद
अली सैयद आप सॉरी इंटरप्ट यू, अगर किसी ने ले लिया है ऑलरेडी और वो से फॉर इंस्टेंस एक महीने या दो महीने बाद अगर वो उसका 1/3 वापस कर दे तो दे आर बेटर ऑफ $10,000 इन देयर पॉकेट नाउ.
अगर क्वालिफाई नहीं करते, आई मीन यस ले लिया है, जिस तरह आप व्हाट यू आर सेइंग मेक सेंस, इट इज डूएबल कि आपने ले लिया है, आप 30,000 उसका वापस कर दें तो 10,000 आप रख सकते हैं. मगर आई एम श्योर उसका जब भी आपके पास क्रेडिट आता है, जब हम क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई करते हैं तो हमारा शुरू में या पहले महीना, दो महीने, इवन पहले साल यही होता है या बस बैलेंस पे करते हैं, हम बैलेंस ही नहीं रखेंगे कोई, सारे का सारा पे कर देंगे. बट ये क्रेडिट कार्ड सिस्टम इतना ऐसा होता है कि इवेंचुअली आप चलना शुरू हो जाता है तो फिर आप उसमें आ जाते हैं, उसके अंदर आप फंस जाते हैं. I'm sure आपने भी जब मुझे पहला क्रेडिट कार्ड लिया होगा आप यही कहते हो कि बस लेके तो क्रेडिट ही बनाना है. बट एंड राइटफुली सो, आई मीन इट्स अ चीपर फॉर्म ऑफ क्रेडिट. इंस्टेड ऑफ आपका अगर बिजनेस है, इंस्टेड ऑफ यू लुकिंग फॉर अ पार्टनर टू इन्वेस्ट इन यू, बेटर इज कि आप बैंक से जाके लोन ले लें, या अगर ये इस टाइम लोन मिल रहा है तो वो चीपर फॉर्म ऑफ क्रेडिट है, आप उससे अपनी ग्रोथ या वो ज्यादा जल्दी कर सकते हैं. बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद क्रेडिट, फंस जाए तो आप उसके अंदर वर्लपूल की तरह वो खींच लेता है आपको अंदर. सो यू हैव टू बी केयरफुल.
ओह माय गॉड, वर्लपूल की तरह वर्लपूल. मगर को पता हम क्या कहते थे, आप बताएं वर्लपूल को आप क्या कहते थे?
वर्लपूल को हम क्या कहते थे?
हाँ, हम क्या
वर्लपूल को तो हम
पानी के बीच नहीं वो जो पानी के बीच में एक भंवर सा नहीं बन जाया करता था, वो कहा करते होते थे जनाब.
मगर अली सैयद, बैक टू दैट $40,000 जिन लोगों के पास है, आई थिंक अ बेटर अकाउंटेंट कैन टेल देम व्हाट टू डू विद दैट मनी इंस्टेड ऑफ जस्ट रिटर्निंग 30,000.
Yes, I mean, yes, you can return 30,000 from it, magar aapne jab liya tha, to kisi na kisi wajah ke liye liya hoga na, I mean, har bande ne, kuch logon ne sirf leke rakh liya hota hai ki payroll ke liye le lenge, aage bills nahi aa rahe honge, to tab, jab pada hota hai, to use ho jata hai. I mean, it's hard to just return the money, just keep 10,000 and return the money. The way uska process sara chalta hai for the first, until the end of this year, wo credit line of credit ki tarah hoga, ki aap use karein, aap uske baad usko bhar dein, use karein. Next year se wo term loan ban jayega, aur uske baad agle do saal, you will have 2 years to return the money. So why would you want to return the money right now? I mean, again, as a business owner, it's up to you. But if you have the facility at least for a year, aap usko use kar sakte hain. Itni wo nahi hai, majhe iski ke bahut restrictions nahi hai. Wo basically ye hai ki aapka operating expense hona chahiye. Aap wo paisa leke, I mean, koi share nahi khareed sakte. Aap us paisa leke koi personal ghar ki down payment nahi kar sakte. Basically wo aapke business ke liye hai ki aapka business hai.
Meant for the business, jis maksad ke liye aapko government ne diya hai, it is aapne usi ke liye
exactly.
بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو فالو کریں جو گورنمنٹ آفٹر آل اتنے پیسے جو خرچ کر رہی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ پیسہ کدھر سے آیا ہے, یہ تو آبویسلی گورنمنٹ کے پاس آیا ہے, پر ہم یہ سوچیں کہ یہ پیسہ کدھر جانا تھا. مین آبویسلی اس پیسے کو گورنمنٹ نے سڑکیں بنانی تھی اور سارا کچھ کرنا تھا, انہوں نے یہ سارے پروجیکٹس روک کے یہ سارے پیسے ہمیں دیے. اگر ہم اس کو ہر بندہ اس کو ابیوز کرے گا تو نیکسٹ ٹائم اللہ نہ کرے اگر اس طرح کا پھر سے کوئی پینڈیمک ہوا تو گورنمنٹ پھر اس طرح نہیں سپورٹ کرے گی, وہ ریسٹرکشن لگا دے گی. So we need to respect کہ government نے اتنا زیادہ ہمیں دیا ہے کہ اب ہم depression میں نہیں بیٹھے ہوئے, گھر میں پیسے آ رہے ہیں, business کے لیے پیسے آ رہے ہیں. So we should respect کہ جو government نے کیا ہے ہم اس کو abuse نہ کریں. اس advantage میں, definitely advantage میں, پر abuse نہ کریں.
آپ نے بات کی کہ this is for our advantage but do not abuse it, do not abuse it and do not misuse it. یہ میری اور آپ کی سہولت ہے, اور اس درخت کو پہ بیٹھیے, اس کی چھایا لیجئے گا, اس کو انجوائے کیجئے گا, اس شاخ کو مت کاٹیے جس شاخ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. علی سید چارٹرڈ پروفیشنل اکاؤنٹنٹ ہیں, ہائیلی ریلائبل ٹیکس سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, ٹیکس میٹرز ہیں, آپ رابطہ کیجئے گا. چھوٹا بزنس ہے, ڈاکٹر اینڈ ڈینٹسٹ ہیں, آئی ٹی سے متعلق ہیں, آپ کوئی کانٹریکٹر ہیں, آپ فل ٹائم کام کرتے ہیں یا پارٹ ٹائم کام کرتے ہیں, اوبر ٹیکسی چلاتے ہیں یا کوئی کسی قسم کی گاڑی کو آپ رن کرتے ہیں, آپ علی سید سے رابطہ کیجئے. 6477861216 اور کیا بتاؤ گے؟
اور یہ بتاؤں گا راہل جی, کئی لوگ اسمال بزنس اونرز اکثر ٹیکس وہ فائل کرنا بھول جاتے ہیں, اور یہ آج کل کافی کامن ہو رہا ہے کہ لوگوں کے 2 سال کے 3 سال کے 4 سال کے ٹیکسز, میں اگر لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اٹس ٹائم کہ آپ اس کو اپ ٹو ڈیٹ کر لیں, جتنا جلدی کریں گے اتنا اچھا ہے. جب آپ کے ٹیکس اوئنگ ہوتے ہیں گورنمنٹ کو, وہ جاب والے تو ٹھیک ہے, ان کا تو ٹیکس کٹ جاتا ہے سورس کے اوپر, بزنسز کا ٹیکس سورس پہ نہیں کٹتا ہے. آپ کی جتنی انکم ہوتی ہے وہ ٹیکسیبل انکم ہے موسٹلی, اور اس کے اوپر آپ نے ٹیکس دینا ہے. اگر آپ 2 سال 3 سال 4 سال سے ٹیکس نہیں دے رہے, ایچ ایس ٹی نہیں دے رہے, ہو سکتا ہے آپ گورنمنٹ کے ریڈار میں نہیں آئے ہیں, مگر جب آئیں گے تو اس کے اوپر انٹرسٹ بھی پڑے گا ٹیکس ان کے اوپر, اور پینلٹیز بھی پڑیں گی, اور وہ کئی دفعہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فرض کریں یو او گورنمنٹ $25,000, وہ پینلٹیز اور انٹرسٹ کے ساتھ مل کے یو اینڈ اپ,
اور یہ ڈے ٹو ڈے کمپاؤنڈنگ انٹرسٹ پڑتا ہے اس کے اوپر.
ایوری ڈے کمپاؤنڈنگ انٹرسٹ پڑتا ہے. اور اگر ہم لاجیکلی دیکھیں آفا جی, اب یہ جتنے پیسے گورنمنٹ نے دیے ہیں اس سال کے اینڈ تک, وہ آئی ایم پریٹی شیور کافی زیادہ آڈیٹرز ہائر کریں گے تاکہ اس چیز کو وہ مانیٹر کر سکیں. جب یہ پینڈیمک سال بعد 2 سال بعد ختم ہو جائے گا تو وہ آڈیٹرز کیا کریں گے؟ فارغ تو نہیں بیٹھیں گے.
مجھے بڑی حیرت ہوئی, اور ریسنٹ آئی لیوڈ ان دس کنٹری فار اراؤنڈ 26 ایئرس, اور میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوتا ہوگا. مجھے 2-3 لوگوں کے بارے میں جب پتہ چلا لاسٹ ایئر, آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ جو لوگ گھروں کو فلپ کرتے ہیں نا, جو گھروں کو فلپ کرتے تھے, ایک آدمی کو کوئی $1 million کے قریب اس کو ٹیکس پڑ گیا. کہاں سے کہ الٹیمیٹلی سی آر اے فاؤنڈ کہ بھئی یہ آدمی گھر بناتا ہے اور فلپ کرتا ہے, اور مگر وہ کیا کرتا تھا, فلپ کرتا تھا, اور وہ جو اس کا
نام پہ کر لیتا تھا,
نہیں نہیں فلپ کرتا تھا, اور وہ کیا اس کو کہتے ہیں, وہ جو آپ پے کرتے ہوتے ہیں گین ٹیکس, وہ گین ٹیکس نہیں پے کرتا تھا, और फिर जब 2-3 साल के बाद गवर्नमेंट को पता चला, ये पूरा 2015, 16, 17, 18, 19 का अरसा उसने इसमें गुजारा. उसके बाद जब सीआरए ने फाइंड आउट किया तो उसको कंपाउंडेड इंटरेस्ट के साथ कोई मिलियन प्लस डॉलर का टैक्स पड़ा. आई रिसेंटली केम अक्रॉस एन अदर पर्सन कि उस शख्स ने क्या किया है, वेरी अच्छी तनख्वाह उसकी, बड़ी ठीक ठाक कमाई, सेल्फ एम्प्लॉयड, तो वो टैक्स ही नहीं पे करता था. एंड आई वाज सरप्राइज्ड, हाउ कम तुम टैक्स नहीं पे करते थे. तो अब क्या है कि गो की उसकी इनकम बहुत अच्छी है तो वो सारी की सारी पेमेंट सीआरए को चली जाती है. ये क्या चीज है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट?
गार्निशमेंट, सबसे पहले तो गार्निशमेंट सही कह रहे हैं वो कि सीआरए कैन फोर्स. जब होता क्या है आफर जी, जब सीआरए आता है आपके पास, आपने टैक्स नहीं दिया पिछले 3-4 साल से, आपके पास रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है, अकाउंटेंट नहीं था तो आपने अकाउंटिंग नहीं की, कोई रिकॉर्ड नहीं रखा, उसके बाद अब गेम ओपन फील्ड में आ जाती है. अब सीआरए अपनी मर्जी से और अपने गेस से और अपने एस्टिमेट से आपकी इनकम आपको बताएगा. आपके पास उस वक्त बहुत कम चांस, उसको आपका ग्राउंड है बड़ा वीक ग्राउंड है उसको चैलेंज करने का. अगर आपकी बेशक आपकी इनकम $1,00,000 थी, लेट्स से फॉर एग्जांपल सीआरए आएगा तो सब कहेगा नहीं आपकी लाख नहीं थी, आपकी तो 1.5 लाख इनकम थी हमारे ख्याल के मुताबिक. उस वक्त इट्स योर वर्ड्स अगेंस्ट देम. तो उसके बाद तो ऑब्वियसली आपकी टैक्स लायबिलिटी
सीआरए, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, सीआरए अगर ये जज करता है कि नहीं जी नहीं आपकी लाख नहीं थी 1.5 लाख थी, तो वो डिपेंडिंग अपॉन माय टुडेज इनकम.
Yes, depending on today's income, वो आपकी सारी इनकम देखेगा और उसके बाद they have full right, क्योंकि आपने तो टाइम पे डिस्क्लोज किया नहीं, रिकॉर्ड कीपिंग आपकी थी नहीं, अकाउंटेंट था कोई नहीं जिसने आपकी प्रॉपर बुक कीपिंग की हो. तो अब सीआरए ने एस्टिमेट करना है, वो अपने तरीके से एस्टिमेट करेंगे, आप अपने तरीके से एस्टिमेट करेंगे. सीआरए ऑब्वियसली वुड हैव मोर ग्राउंड्स के नहीं, हम जो स्टेटिस्टिकली हम इस बिजनेस की और इस ग्रोथ की हिसाब से ये हमने इनकम बनाई है आपकी और ये हमारे ख्याल से आपका टैक्स है और ये आपने पे करना है. अगर आप नहीं पे कर सकेंगे तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, उसकी वेज गार्निशमेंट भी होती है. सीआरए कैन इन्फोर्स द पेमेंट्स ऑन यू और तो वो फिर देन इट बिकम्स अ लॉट मोर मेसियर. एक सिंपल सी बात है कि अक्सर हर बंदे का एक तो दोस्त है जो कि टैक्स नहीं पे करता और हर बंदे का एक दोस्त है जो कि बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं और वो टैक्स नहीं पे करते. अब हो सकता है ऐसा हो, मगर जो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं वो बहुत एक्सपेंसिव लॉयर्स भी रख सकते हैं.
मुझे एक बात बताइएगा कि किस एज से यू हैव टू स्टार्ट फाइलिंग. से देयर इज अ स्टूडेंट, ही इज 19 इयर्स ऑफ एज एंड ही इज नॉट मेकिंग एनी मनी, तो शुड ही फाइल हिज टैक्स?
ही शुड फाइल अ टैक्स बिकॉज उसमें कई क्रेडिट्स होते हैं जो कि आपको मिल सकते हैं. अगर आप रेंट पे कर रहे हैं आपको जो कई और क्रेडिट्स होते हैं जो कि आपको मिल सकते हैं, बेशक $100 या $200 भी मिले हैं जीरो इनकम के ऊपर भी, दे शुड स्टार्ट फाइलिंग. बट द टैक्स फाइलिंग बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपकी इनकम आप जनरेट करना शुरू करें और स्पेशली जब उस इनकम के ऊपर आपने टैक्स ना दिया हो, जैसे आप ऊबर चला रहे हैं या कोई भी. आजकल के जो बच्चे हैं उनके पास तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है इनकम अर्न करने की, अमेजिंग टाइम में गुजार रहे हैं वो, एप्स हैं, डिफरेंट चीजों से वो पैसे बना रहे हैं. तो अगर टैक्स नहीं दिया देन इट बिकम्स अ लायबिलिटी कि आपने टैक्स फाइल भी करना है और टैक्स पे भी करना है. तो ये
अली सैयद आप अपना नंबर एक बार फिर से दीजिएगा. और अक्सर लोग डरते ही रह जाते हैं, बड़ा आदमी है, पैसे गल करांगे, पता नहीं कितने पैसे चार्ज कर लेगा.
इट्स बेटर कि आप थोड़े से पैसे अभी दे दें एज अपोज टू कि आप बाद में उससे ज्यादा करना. तो आपका काम किसी अकाउंटेंट की, जब आप फंसेंगे तो आपको अकाउंटेंट ही की जरूरत पड़ेगी, तब आप ये सेल्फ लर्निंग वाला काम नहीं कर सकेंगे कि उस वक्त वी हैव टू टॉक अकॉर्डिंग टू द एक्ट. तो उस वक्त उससे पहले बचे और तब आपका बिल भी टैक्स बिल भी बहुत ज्यादा आ जाएगा. तो इट्स बेटर कि आप थोड़े थोड़े पैसे करके अभी देते रहें. नंबर है 6477861216 6477861216 7861216.
अब मैंने आज तक कभी किसी इंटरव्यू में आपसे ये बात नहीं की, आज करूंगी. आपको शायद पता नहीं टोरंटो वालों से मैं मेरे बहुत प्यारे भी हैं. अगर मैं उनको कहती हूँ कि अली सैयद के पास जाओ, चार्ज तो करेगा मगर आपका काम बेहतरीन होगा, आपको टैक्स में रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, यू वोंट हैव एनी इश्यूज इन लेटर ऑन. तो मेरा पुत्र, मेरे तो वो दिल भर जानी है सारे, तो व्हाट इज स्पेशल आर यू गोइंग टू गिव देम ऑफर देम फाइनेंशियल, यानी मूला बेनिफिट क्या है?
जी, अब जहां तक सर्विस चार्जेस की बात है तो आई मीन वो तो है ही है, अगर कोई आपका रेफरेंस देगा वी कैन ऑब्वियसली डील विद देम मोर प्रोफेशनली लाइक इन टर्म्स ऑफ सर्विस चार्ज, प्रोफेशनली तो हम हर एक से डील करते हैं, वी कैन ऑब्वियसली बी लॉट मोर लीनियंट जहाँ पे बिलिंग और सर्विस चार्जेस की बात आती है, बट चाहे आपके रेफरेंस से आएगा तो ऑब्वियसली ज्यादा अटेंशन होगी, बट इन जनरल हम अपने सारे क्लाइंट्स को पूरी अटेंशन देते हैं, ऑप्शंस बताते हैं, अल्टरनेटिव्स बताते हैं, जो कि किसी भी एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट का काम है. वी विल नेवर डू एनीथिंग दैट इज इलीगल बिकॉज वी नो कि आज नहीं तो कल वो आपको ज्यादा मसला देगा. फॉर ऑल योर लिसनर्स, फॉर ऑल स्मॉल बिजनेस ओनर्स आउट देयर, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जब आपका टैक्स रिटर्न जा रहा है अगर आप कुछ इलीगल कर रहे हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आपके अकाउंटेंट की नहीं है. We are not responsible. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके साइन हुए हैं, आपकी कॉरपोरेशन है. एज लॉन्ग एज मैं आपको गलत एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, आई मीन आई एम टोटली आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल. तो किसी प्रोफेशनल अकाउंटेंट से बात करें. हमारे पास हमारे ऊपर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडीज हैं जो कि हमें मॉनिटर कर रही होती हैं, जो कि नॉन डेजिग्नेटेड अकाउंटेंट है. अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट देम, दे आर वेरी वेरी फाइन पीपल, बट उनके ऊपर कोई बॉडी नहीं होती है. सो they can do whatever they want. Aur kal ko agar koi phansega to wo aap phansenge as a small business owner, as a taxpayer. Accountant ke phansne ke chances bahut kam hote hain. So be very careful jab aap koi bhi aisi tax evasion ki strategy use karna chahein, apne check kisi aur apni wife ke account mein dal dein ya apne husband ke account mein dal dein ya apne income chupane ki koshish kare, just remember kal ko aap phansenge, aapka accountant bhi phansega. So be very careful.
9046471861216786 अली सैयद का नंबर है. अली बहुत शुक्रिया फॉर ऑल दिस इंफॉर्मेशन. दो गवाहियाँ आई हैं. देर इज़ वन पर्सन 8942 ही इज़ अ ग्रेट गाय, आई टॉक टू हिम. एंड देर इज़ अनदर पर्सन 2359 उन्होंने भी आपके बारे में बहुत पॉजिटिव वर्ड्स कहे हैं. अब ये नहीं पता कि आपके ये समधी हैं या
मेरे समधी अगर वर्ड देते तो वो पॉजिटिव ना होते.
आपको सुन रहे हैं
भी कि वो मेरे समधी नहीं है, पर ये देखिए आपके लिस्नर से आई प्रोवाइडेड देम विद एक्स्ट्रा सर्विस.
आई लव यू बेटा, थैंक यू वेरी मच. बच्चों की तरह से हो, आपको तो समझी हो ही नहीं सकते. मुझे पता है तुम्हारे बच्चे तो भी पिंदे पिंदे होंगे, छोटे छोटे से होंगे. तुम्हारे समझी तो
हाँ, कोई
हाँ, ये समझा वो नहीं होता, साले जो होते हैं ये सालों की तरह.
ओह यस, वही ना, मतलब कोई वो फैमिली मेंबर नहीं है, वो मेरा नहीं है.
आई लव यू बेटा.
रिश्ता गलत हो गया. बहुत शुक्रिया.
अली सैयद चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं. आप कॉल कीजिए, इंफॉर्मेशन लीजिए, कोई हेर फेर नहीं. मैंने खास तौर पे आप लोगों के लिए स्पेशल लेने को जिन्होंने कहा कि मैं सर्विस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा. आई विल गिव देम बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस. ऑफ कोर्स जो एक चार्जेस हैं वो चार्जेस हैं, बट विल मेक श्योर सो दैट वो कभी रिग्रेट ना करें. 6477861216 थैंक यू वेरी मच बच्चा.
थैंक यू सो मच आरफी. थैंक यू सो मच
बेटा. थैंक यू. मेरे साथ बड़ी प्यारी शख्सियत बैठी हुई है और थोड़ा न्यूज़ की तरफ आपको लेकर के निकलती हूँ. बहुत शुक्रिया हमारे उन तमाम स्पॉन्सर्स का जिनके तवस्सुत से ये प्रोग्राम हम पेश करते हैं. शाजिया जी का भी टाइम है और शाजिया जी और नहीं नहीं तौसीफ भाई यहाँ पे बैठे हैं. शाजिया जी आप भी तशरीफ़ ले आएँ, आप दोनों मिल के बात करें क्विकली. शाजिया जी न्यूज़ को कवर करते हुए मजूद. अच्छा शाजिया जी वहाँ जा रही हैं. तौसीफ भाई वेलकम टू साज़ो आवाज़. अस्सलाम वालेकुम.
जी वालेकुम सलाम.
कैसा जा रहा है ये सोशल डिस्टेंसिंग का पीरियड?
एक मुनफरिद सा तजर्बा है और सब लोग कुछ अरसे के बाद तकरीबन 6 महीने तक मेरा ख्याल है इसके मुकम्मल आदि हो जाएंगे, उनको अंदाजा हो जाएगा.
मैं और ये हम लोग यही कहते होते हैं कि शायद इसके बाद ज़िंदगी बदल जाएगी. मैं अभी वही पल के जब जिक्र कर रही थी, कहते हैं कि ये जो 1918 में स्पेनिश फ्लू भी आया था ना, हिस्टोरियंस कहते हैं कि उस ज़माने के जो प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन, उनका भी फेलियर था, साइलेंस उनकी थी. उन्होंने कहते हैं कि पूरे अरसे के लिए नॉट वंस हिस्टोरियन सेज डिड विल्सन पब्लिकली स्पीक अबाउट द डिजीज दैट वाज किलिंग अमेरिकन्स. इतने बड़े नंबर के बीच में मार रही थी और बाद में हालांकि जो मिस्टर विल्सन थे, थॉमस विल्सन, इनको खुद भी स्पेनिश फ्लू हुआ था. तब भी यही गलतियां हुई थी, यही फ्लू था, मगर देखिए 1819 के बाद, उसके बाद लोग मास्क पहना करते थे, सोशल डिस्टेंसिंग वाज मस्ट, शाजिया जी भी मेरे साथ शामिल हो गई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग वाज मस्ट, मगर वो कहते हैं ना दो पहिया विसर गई, बंदियां दूर बुलाइयां गई, और
गई, बात गई।
रात गई बात गई, किस्सा लेके साथ गई। और ये भी मुझे लगता है कि 6 महीने तक तो ये हमारे साथ रहेगा, मगर उसके बाद शायद लाइफ विल,
उसके बाद मेरा ख्याल है कि या तो कोई मेडिसिन ऐसी आ जाएगी जिससे,
वो तो उम्मीद करते
हैं, उम्मीद ही कर रहे हैं, और वैक्सीन में शायद 1 साल लगेगा, तो हमें यानी ये ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि 1 साल खासा मुश्किल है, लेकिन चूंकि मईशत को इन्होंने चलाना है और 1.5 महीने से तकरीबन मईशत का पहिया रुका हुआ है, अब कल से यहाँ ओंटारियो में भी कुछ बिजनेस और कुछ आसानियां की हैं और ग्रेजुअली करेंगे, डकफोर्ड ने कहा है।
अगर अगर मैं आपकी बात को फिर काट रही हूँ कि मैंने, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू, सुबह से मैंने इसको बड़ी डिटेल में पढ़ा कि 1918 में जब ये होता है और यही सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों का लॉकडाउन हुआ था, फिर जब ये कंट्रोल होता है तो इनको अनलॉक कर दिया जाता है, लोग बाहर निकल आते हैं, और जो दूसरा रेला वबा का आया था वो शदीद तरीन वबा का रेला,
उसी से ये खौफजदा हैं बिल्कुल,
और वही सिनेरियो की तरफ हम चल रहे हैं, वही सिनेरियो की तरफ चल रहे हैं। एनीवेज तब भी नमूनिया का जो स्पेनिश फ्लू था वो भी सांस की तकलीफ थी, नमूनिया का उसमें जिक्र था, वायरल अटैक था, स्पिट की वजह से फैलता था, एग्जैक्टली सेम सिम्टम है, मगर साहब जिंदगी कि काया पलट गई है। वो ज़माने में सोशल मीडिया कहाँ था, आज के ज़माने में सोशल मीडिया कहाँ है, मगर देख लीजिएगा हालात कार वैसे ही हैं। पाकिस्तान की भी न्यूज़ की तरफ लेके जाना है। हाँ जी। शाजिया जी आप क्विकली कवर कर दें प्लीज़।
हाँ जी, हाँ जी, तो असल में तो जो तौसीफ़ है ना, देर इज़ अ बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स जो है, वो मीडिया को ज़रा थोड़ा सा डराया भी जा रहा है, और इस तरह मुझे ये लगता है, दिस इज़ माई ओन पर्सनल ओपिनियन, कि कुछ ऐसे है। लेकिन जो जहाँ तक वैक्सीन की जैसे आपने बात की, मेरा अपना भी तजर्बा है, एंड आई इफ़ समबडी वॉन्ट्स टू कोट मी एंड कीप मी ऑन रिकॉर्ड, तो मुझे नहीं लगता है कि नेक्स्ट समर तक कोई वैक्सीन जो है आ सकेगी।
एक साल का इन्होंने तो कहा है ना, 15 से 17 महीने
तो कहा है कि अर्लियर देन अ ईयर, जो कि उनका मतलब था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मे बी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बट डॉक्टर फाउची ने जैसे कहा अर्ली नेक्स्ट ईयर, मुझे नहीं लग रहा कि अर्ली नेक्स्ट ईयर भी शायद कुछ आ सकेगी। आई डोंट थिंक सो टिल समर जो है नेक्स्ट ईयर कोई चीजें ठीक हो सकेंगी, क्योंकि अभी तक आप देखें, आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी एक इजरायली जो कंपनी है उसकी, और उन्होंने कहा है, हमारे अपने पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ये चल रही है चीज, आपको पता है आज भी जो पाकिस्तान के अंदर है वो जो प्लाज्मा थेरेपी है
उसके फर्स्ट पेशेंट के ऊपर हो गया
उन्होंने, हाँ, तो उन्होंने वो करने शुरू कर दी है इस तरह के तजर्बे चीजें, और रेमडेसिविर जो वो दवाई है उसको भी। अब पता है क्या बात है, अटकल पचुओं से ना ये चीज जाने वाली नहीं है।
अच्छा मैं आपको बताऊं शाजिया जी, आप जब अटकल पचुओं की बात कर रही हैं ना, आप अटकल, आप 100 साल पीछे चली जाएं, मैं बल्कि उसको आई एन आई सरप्राइज, वो कहते हैं इन 1980 पीपल आर अगेन हियरिंग हॉलो एश्योरेंसेज ऑड्स ऑफ द रियलिटी, उसमें कहते हैं फिलिंग उसमें कहते हैं द एंशंट कॉमन सेंस ऑफ क्वारंटीन, तब भी बात हो रही थी, रब रॉ अनियन ऑन योर चेस्ट के अपनी सीने के ऊपर आप अनियन को मलें वगैरह वगैरह, तो अब भी हुई रेमेडी डिसइनफेक्टेंट्स की, उस जमाने में हाउ अबाउट द डिसइनफेक्ट डिसइनफेक्टेंट्स
जी। और आप देखें ये जो आज का जो मैं बयान आपको बता रही हूँ इजरायली कंपनी का, ये उनके डिफेंस मिनिस्टर ने, कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट,
बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट,
कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, उसने ये कहा है कि जी वी आर जस्ट यू नो डेज अवे फ्रॉम यू नो मेकिंग दिस अ पेटेंट, यानी उनका ये बताने का मकसद है कि जी हम ऑलरेडी ये कर रहे हैं,
वी हैव अचीव्ड, यानी हमने वैक्सीन बना ली
जी। जर्मनी और इंग्लैंड ने भी क्लेम किया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी ये सारे क्लेम
जो है, अभी तक तो वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसने ये बनाया होता वो तो मल्टी बिलियनर बन गया, उसके तो सारे वो वॉरेन बफे ने बल्कि बहुत सारे अपने एयरलाइंस के शेयर जो है वो कल जब अपने बेचे और काम आई हैव मेड अ मिस्टेक, लेकिन उसको उसके एडवाइजर्स ने कहा था कि अब ये एयरलाइन के शेयर रखने की बात नहीं है, आप फार्मास्यूटिकल्स के शेयर लें।
आजकल
इस तरह की कोई बात होती तो वो ले लेते, लेकिन आप मुझे याद आता है एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया था, बेसिकली था तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, आतिफ मियां साहब का, न्यूयॉर्क टाइम्स में दिसंबर में लास्ट ईयर, और उसमें उन्होंने बताया था कि हाउ टू फिक्स अ क्रम्बलिंग इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, लेकिन उसके अंदर जो सबक उन्होंने जो सीख दी हुई है ना, जो आतिफ मियां साहब ने उन्होंने बताया हुआ है कि आप कैसे इकोनॉमीज अपनी को टर्न कर सकते हैं, अपने जो बिला वजह के जो खर्चे हैं जो कि आपको पे नहीं करते हैं वो आपको ख़त्म करके और वो करने पड़ेंगे दूसरे। ये जो दुनिया में इस वक्त हम देख रहे हैं कोविड 19 की वजह से ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं, मैं देख रही हूँ कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, आई मीन कीपिंग दैट आर्टिकल ऑफ आतिफ मियाँ इन माई माइंड, कि वो जो बहुत सारी कंट्रीज अभी भी हैं ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट्स का बताती हैं लोगों को या करती हैं अपने भी मुल्कों में, कि जिनका के जो आउटपुट होता है वो उतना नहीं होता है। उस आर्टिकल का मेन मकसद, आपको पता है आतिफ मियाँ बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट
हैं,
उस आर्टिकल का मेन मकसद ये था कि जो यूरोप के अंदर भी जो इकोनॉमीज या दूसरी जगह पे जो क्रम्बल कर जाती हैं, जैसे कि उनका इशारा मेरे ख्याल में ग्रीस और इटली की तरफ था, वो ये होता है कि आप उन चीजों में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जिससे कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होता, जिसमें कि आपको वो चीजें होती हैं कि जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट डेड हो जाती है उस जगह पे। तो मुझे लगता है कि अगर ये जैसे आप, क्योंकि मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूं, आप कह रहे हैं ना कि बहुत सारा इकोनॉमी के ऊपर असर है, हमारी भी इधर ऑन्टेरियो में या कनाडा में एट अ लार्जर आप उस पर पिक्चर में भी देखें, बहुत सारी गवर्नमेंट उन चीजों के ऊपर इन्वेस्ट करती है जिसका कोई उसको जो है फायदा नहीं है, रिटर्न नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि ये इकोनॉमीज जो है खोलने से चलेंगी या ऐसी चीजों में इन्वेस्टमेंट करने से चलेंगी जहां पे के उसका इनको रिटर्न आएगा। जैसे कि बड़ी इंटरेस्टिंग उसने एक मिसाल दी हुई थी उसके अंदर उस आर्टिकल में, उसने कहा कि पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क 2.5 मिलियन एकर्स जो है उसके ऊपर एग्रीकल्चर करता है जिसमें बेतहाशा पानी चाहिए, थिंग्स लाइक शुगर केन। ऑलरेडी आपके मुल्क में क्राइसिस है और आप शुगर केन जैसी चीज पैदा कर रहे हैं, उसका जीरो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इतनी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं और आपको फायदा उसके ऊपर। कनाडा के अंदर भी जो पिछले 7 साल से जो मैं इस मुल्क में हूं, मुझे ये देखने में लगता है कि हम उन चीजों के ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं, जीरो हमारी जो है, हमारी पिछले 7 साल में जो मैंने देखा है जो फ्लाइट ऑफ इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में रही है, कोई इनका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, कोई मेरे ख्याल में जो इनके खाने हैं ना, वो जो इकोनॉमिक उसके जो है उसको राइज करने के, उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। इनका फोकस सिर्फ दो कंट्रीज पे है, एक चाइना एक इंडिया, और मतलब यूएसए तो ट्रेडिशनल इनका
तो
पार्टनर
है।
उसके बाद
उससे तो डेली,
आई डोंट रियली अंडरस्टैंड द इंटेलिजेंस ऑफ इवन द इकोनॉमिक टीम ऑफ द लिबरल गवर्नमेंट आल्सो। मुझे शायद बहुत सारा बैकलैश भी इस पे आने वाला है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग सिर्फ दो कंट्रीज के ऊपर फोकस करके क्यों बैठे हुए हैं। आई इन माई डिस्कशंस विद, जो एक कद कोई मेरा इंटरेक्शन प्राइम मिनिस्टर के साथ हुआ या जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बिल मॉर्नियो के साथ बहुत मेरा लेंथी डिस्कशंस होती रही और मैं इनके इंटरव्यूज लेती रही हूँ, मैं उनको जब अच्छे दिन थे, अच्छे दिनों की बात कर रही हूँ, नॉट दीज डेज, मैं उनको कहती रही हूँ कि व्हाई यू आर नॉट लुकिंग टुवर्ड्स द डैम रिच अरब कंट्रीज, आपका फोकस ही नहीं है उनकी तरफ, वो आपके मुल्क में डायरेक्ट फॉरन इन्वेस्टमेंट लाएंगे।
नहीं उनसे तो आपको पता ही है कि सऊदी अरब से
नहीं, सऊदी इज नॉट गल्फ ना,
नहीं मैं बात कर रहा हूँ कि
कंट्रीज आर वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज, लाइक फॉर एग्जांपल वाज कतर, राइट,
कतर है,
अभी भी
यूएई है,
कतर, बहरेन, यूएई, तो ये जो कंट्रीज थे उनकी तरफ, एंड देन यू डोंट रियली हैव एनी अदर यू नो वेज ऑफ ब्रिंगिंग यू नो इन्वेस्टमेंट इन अ सेंस जो कि आपको लॉन्ग टर्म में पे करेंगी। आज का भी जो मैं देख रही थी यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 252 मिलियन डॉलर्स की एड जो है वो दे रहे हैं फूड प्रोसेसर्स और फार्मर्स को। इससे पहले इन्होंने अनाउंस किया
फिश,
है
फिश, फिश और दूसरे इससे रिलेटेड जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए भी अनाउंस,
पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है स्टूडेंट्स के लिए। इससे पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स इस तरह की जो है वो अनाउंस की हैं कि हम ये देंगे। आप प्राइम मिनिस्टर हैं मुल्क के, आप जरा बैठें, आप सोचें कि ये जो आप कर रहे हैं इस वक्त के, ये जो आप गुडीज इस तरह पे कर रहे हैं, ये इन द लॉन्ग रन आपकी इकोनॉमी को रन करने में फायदेमंद साबित होंगी।
देखें
ये पॉलिटिकल पार्टीज का मेरा ख्याल है एक तरीका कर है टू टेक द फेवर्स, नंबर्स आपको नजर आने चाहिए।
एग्जैक्टली, दैट्स द थिंग। उनको पता है कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कि हमारा जो है वोट बैंक है, उनको हमने खुश रखना है,
उन्होंने नंबर्स देखने हैं। नंबर्स पे लोग बिलीव करते हैं। ये खैर एक अलग एक टॉपिक है, इस पे बात करेंगे बाद में, अभी आप जो कोविड 19 की बात कर रही थी उसकी थोड़ी सी लेटेस्ट यहाँ की कनाडा की कुछ बताएं कि आज तक की क्या ओंटारियो में
है? आज सबसे बेहतरीन जो चीज है वो यही आई है ना कि इंग्लैंड जो है, सॉरी आपका अमेरिका और रशिया, वो जो एक समिट हुई है और जहाँ पे फंड रिलीज किए हैं अमेरिका और रशिया, उन्होंने ये वैक्सीन की प्रेपरेशन में
जी 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 जी
वो दोनों पीछे हट गए हैं। कनाडा ने तो बहुत पैसा दिया।
हाँ जी, वो तो कल ही हमने सुनाया था कि कनाडा ने पैसे दिए हैं उसके लिए, क्योंकि उसको जो है वो हेड कर रहे थे ये फ्रांस और इंग्लैंड और ये सारे कंट्रीज।
अच्छा, चाइना ने भी कोई पक्का प्रॉमिस नहीं किया, मगर अमरीका की जो इस वक्त जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है उनकी तान ही टूटती है तो चाइना पे जाके टूटती है कि शायद चाइना डजंट वांट टू सी हिम एज ए प्रेसिडेंट नेक्स्ट टाइम।
लेकिन वो जो वहाँ पे पोल्स भी आ रहे हैं, आज भी जो पोल्स आए हैं उसमें भी यही आ रहा है कि जो बाइडेन जो है वो आगे चल रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनकी जो है वो थोड़ी सी पॉपुलैरिटी नीचे आ गई है, द वे ही हैज हैंडल द होल सिचुएशन एंड एवरीथिंग।
और मजे की बात यह है, ये जो आज का आर्टिकल है, ये जो कोविड 19 को उन्होंने स्पेनिश फ्लू से कंपेयर किया है, और उसमें जो उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे उनको कंपेयर किया गया कि उनका बिहेवियर इज एग्जैक्टली वुड्रो विल्सन जो थे, उनका बिहेवियर इज एग्जैक्टली व्हाट द डोनाल्ड ट्रंप्स।
जी जी, ये हम सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे डिस्कस करते रहे हैं WHO की भी, कि WHO ने इनको बिगिनिंग ऑफ जनवरी बताया, फिर उन्होंने तो कोट किया बल्कि मिस्टर टेड्रोस को, उन्होंने क्योंकि WHO को बहुत दबा रहे थे, उन्होंने कहा जी 30 जनवरी को तो एग्जैक्टली मैंने ये स्पीच कर दी थी कि एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो है पेंडेमिक टाइप का जो है ये डिजीज फैलने वाली है। तो आप वही, हमने बड़ी दफा ये बात की है एंड वी रिपीट
ourselves,
ट्रंप साहब तो मतलब इंडिया के चक्कर लगा रहे थे फरवरी के
महीने में,
वो घूम फिर रहे थे और मतलब मजे कर रहे थे, तो टाइम तो आपने वेस्ट किया ना। WHO की तो 30 जनवरी की
उन्होंने तो वार्न कर दिया था, WHO ने वार्न कर दिया था और गाये बगाये वो बताते रहते हैं,
वो तो उन्होंने तो बता दिया था कि ये आ रहा है। तो भाई आपका जो यूरोप के अंदर आप लोग जो लीडर्स थे आपने लेट लिया अपना वो सारा, और ये आज भी मुझे नजर आ रही है, ये न्यूयॉर्क के अंदर देखें आप, न्यूयॉर्क के अंदर यानी आप देखें झूठ भी चल रहा है, न्यूयॉर्क के अंदर 1700 जो डेथ्स हैं वो सिर्फ जो है नर्सिंग होम्स में है। और वो आज वो पिन पॉइंट की गई हैं और वो आज सामने आई हैं, इससे पहले वो जो नर्सिंग होम्स में डेथ्स हो रही थी उनका बता ही नहीं रहे थे वो। तो मतलब आप भी तो छुपा रहे हैं ना, आपके मुल्क में जो है पूरे जो केसेस हैं आप देखें आपके, ये जो CNN ने भी कहा है कि ये जो आप ईज कर रहे हैं ना, CNN की रात की रिपोर्ट थी बड़ी इंटरेस्टिंग मैं देख रही थी, वो कह रहा है CNN कह रहे हैं कि आप जो ये कहते जा रहे हैं कि जी हम अब ईज कर देंगे, इकोनॉमी का बड़ा नुकसान है और ये है, 134,000 डेथ्स वी आर प्रोजेक्टिंग इन USA। तो ये जो आपके इकोनॉमी की ये और जो ये चीजें जो, और अभी तक जो है फॉर एग्जांपल, और ये कोई 134 से दूर नहीं है क्योंकि 70,000 लोग ऑलरेडी दे हैव डाइड इन द US। तो और इसी तरह बाकी के भी जो लोग हैं वो भी कहते जा रहे हैं इनको। और आप देखें कि हम, मैं और माजिद भाई एक दिन इससे पहले डिस्कस कर रहे थे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ये जो है डेनमार्क स्वीडन नॉर्वे ये सारे कंट्रीज, तो आप फिनलैंड, तो आप यकीन करें कि इन कंट्रीज से कोई खबर नहीं आ रही थी, ऑल ऑफ अ सडन स्वीडन से खबर आई कि जी हजारों में लोग चले गए हैं। और आज नेदरलैंड्स का मैं देख रही थी कि 5,000 बंदा ऑलरेडी मर गया वहां पे, आप देखें जरा नेदरलैंड्स में, और वो बता रहे थे जी कि उन कंट्रीज में सब कुछ है, 41,000 से केसेस ऊपर वहां पे चले गए हैं। तो आप कहने का मतलब ये है कि डिटेक्शन तो है ही नहीं। अब कुछ दिन पहले हमने एक और भी रिपोर्ट की थी इंडिया के ऊपर, वो एक आर्टिकल आया हुआ था इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, तो वो कह रहे थे कि भई ये कैसे पॉसिबल है, और फोर्ब्स मैगजीन में भी था कि कैसे पॉसिबल है 1.3 बिलियन लोगों का मुल्क है और उसमें 5 या 10 या उसकी वजह ये है कि
आपके माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स ने भी इस पे अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया था।
आप तो टेस्टिंग ही नहीं कर रहे,
असल मसला वही है कि वहां पे टेस्टिंग नहीं हो रही ना, गरीब ममालिक में सबसे बड़ा मसला ये है।
इंडिया को अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान से तो पाकिस्तान की निस्बत तो इंडिया में टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है।
नहीं,
पाकिस्तान में काफी हो रही है टेस्टिंग। हाँ जी,
टेस्टिंग, लेकिन जिस हिसाब से आबादी है ना वो रेशो उतनी नहीं बनती, वो अगर 10,000 या 5,000 या 7,000 लोगों को कर रहे हैं तो वो नाकाफी है।
सही
आप देखें कि आज भी जो है WHO वगैरह और ये बाकी जो हैं और एक्सपर्ट्स, हम हमेशा ये बड़े बड़े चीजों का नाम ले लेते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, ने हमारे अपने भी मुल्क में बड़े लायक مطلب ہے لوگ ہیں ہمارے اپنے ملک میں. آپ کو پتا ہے جب انہوں نے کہا ہے کہ ہم ذرا ایز کر دیں گے تھوڑا سا, کیونکہ گورنمنٹ نے آلریڈی نوڈ دے دی ہے کہ ہم 9 مئی سے لاک ڈاؤنز ختم کر رہے ہیں, رائٹ. انہوں نے کہا کہ جی, یعنی کہ ایز کر رہے ہیں اس کو. آپ یقین کریں, آلریڈی ہم نے شروع کس سے کیا تھا, 79 کیسز سے. ٹوڈے دیر آر اوور 22,000 کیسز ان پاکستان, اور ابھی بھی ایکسپرٹس ان کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی اگر آپ نے احتیاط نہ کی اور احتیاط سے نہ چلے تو یہ کیسز بہت اوپر چلے جائیں گے. اور ان کو آلریڈی ایک جو پاکستان کو ایک وارننگ ہے آ چکی ہے آلریڈی ڈبلیو ایچ او سے, بالکل آ چکی ہے کہ آپ کے کیسز ریچنگ سمر 2 لاکھ تک پہنچ جائیں گے. اینڈ ہاؤ ول اے پور کنٹری لائک پاکستان, ورلڈ ہیلتھ
آرگنائزیشن نے تصیب بھائی شروع میں اپریشیٹ بھی کیا تھا نا کہ پاکستان از کوپنگ ان اے ویری نائس مینر.
دیکھیں وہاں پہ تو پاکستان میں سب سے بڑا سیاسی مسئلہ بنا رہا دوسری پارٹیز کے پروونس اور فیڈرل آپس میں لڑائی کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا, آپ نے یہ پھیلایا, آپ نے اس کو اس جگہ پر روکنا چاہیے تھا. میرا اپنا خیال یہ تھا کہ پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ کو صوبوں کو ساتھ ملا کر ایک متفقہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا اور کرنا چاہیے تھا, اور 8 دن یا 15 دن. اب دیکھیں کتنے لوگوں نے آرٹیکل لکھے, آپ نے بھی پڑھے ہوں گے, ہم نے بھی دیکھے, کہ ان سب میں یہی کہا گیا کہ ابھی تک یہ بتائیں کہ بھوک سے کتنے لوگ مرے ہیں, کوئی ایک آدمی نہیں ہوگا.
ہمارے تو آپ نے کبھی بیان سنا ہوگا جو کیا تھا, جو لاسٹ مطلب قائم علی شاہ صاحب کا تو آپ نے سنا ہی ہوگا جو بیان تھا. وہاں پہ تھر کے علاقے میں گئے تو وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ مر گئے, تو کہنے لگے کہ سر یہ دیکھیں یہ جو ہے ان کے پاس نہ پانی ہے نہ روٹی ہے, اس سے مر. کہتے ہیں نہیں, یہ اس سے نہیں مرے, یہ تو بھوک سے مر گئے. تو بھائی جس کے پاس پانی اور روٹی نہیں ہے وہ بھوک سے ہی مرا ہوگا نا.
تو انہیں چاہیے تھا 8 دن یا 15 دن کا ایک سخت فیصلہ کرتے,
کانسیپٹ
ٹوٹل کرفیو نافذ کرتے, اور اس کے بعد لوگوں کو یہ. اب دیکھیں والنٹیئر آ رہے ہیں, ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز کو سیاست کی نظر کر دیا جاتا ہے.
ہمارے یہاں سب سے بڑا غم کی بات یہ ہے کہ ریلیجن سیاست کی نظر ہو گیا ہے.
ریلیجن اور سیاست دو ہی ایشو ہیں.
آپ کے ساتھ میں بلکہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں پر ٹورنٹو میں تھون کلف کے علاقے میں, حالانکہ یہاں پہ سوشل گیدرنگ ٹوٹلی الاؤڈ نہیں ہے, فائن ہے, تھون کلف کے علاقے میں ایک مولوی صاحب ہیں یا امام ہیں جو کوئی بھی آپ سمجھ لیں, انہوں نے نا اپنے گھر میں نماز کا بندوبست کیا یا بلڈنگ میں نماز کا بندوبست کیا, اور یہ 10-15 لوگ وہاں جا کے نماز پڑھنا شروع ہو گئے. الٹیمیٹلی وہ جو امام صاحب ہیں ہی از ڈائیگنوزڈ کووڈ پازیٹیو. ان کے پیچھے جو 10 بندے نماز پڑھنے والے ہیں, ہر آدمی سمپٹمیٹک ہو کے گھر کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے. لیٹ می گیٹ دا رپورٹ, آئی ول شیئر دیٹ رپورٹ. مگر جی شازیہ جی اور توصیف بھائی کا آج فائدہ لے لیں, آج ہی از آلسو ہیئر. سو
شازیہ جی تو پاکستان کے حالات بتا دیجیے.
پاکستان کے حالات تو ابھی آج کل سب سے اہم ٹاپک چل رہا ہے ڈاکٹر فردوس عاشق افغان کا, کہ ان کو کیوں فارغ کیا گیا.
چھوڑ دیں, میں کہتا ہوں گولی مار.
لوگوں نے اس پہ اتنا زیادہ شور کیا ہے.
وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ہر گورنمنٹ میں ہوتی تھی,
ہر گورنمنٹ میں تھی. آئی تھنک میرا خیال ہے فردوس عاشق افغان کو کہنے اس وقت جو سب سے زیادہ, آج ہی میں وہ پڑھ رہی تھی, اور بلکہ میں نے شازیہ جی سے بھی یہ کہا تھا کہ ہمیں وہ کلپ نکالنا چاہیے کہ گفتگو کا محور بنے ہوئے شہباز شریف,
انہوں نے انٹرویو
دیا ہے, اور کیا وجہ ہے کہ این آر اوز کی بات ہو رہی تھی اور پھر وہ ایمبولنس کے ذریعے اپنے بھائی کو لے کے چلے جاتے ہیں, واپس آتے ہیں تو مریم نواز گو کے اپنے ولا کے بیچ میں موجود ہے مگر ان کا کوئی بیان نہیں آ رہا, اور لگتا ہے جیسے شہباز شریف اپنی نئی پارٹی بھی کوئی بنا رہے ہیں. یہاں کیا کہیں گے؟
نہیں, میرا اپنا خیال نہیں ہے کہ کوئی نئی پارٹی بنائیں گے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس مسلم لیگ پہلے سے موجود ہے, اس میں کچھ وہ اسٹیبلشمنٹ کے تھوڑے قریب سمجھے جاتے ہیں, تھوڑے سے مفاہمت پر یقین رکھتے ہیں. مشرف کے دور میں بھی, اس سے پہلے بھی, بالکل وہ تھوڑے دھیمے مزاج کے
ہمیشہ
بظاہر, یعنی ویسے تو بہت سخت مزاج ہیں اگر ایڈمنسٹریشن لیول پہ, لیکن سیاسی حوالے سے وہ نواز شریف سے خاصے مختلف ہیں. نواز شریف صاحب بہت ساری چیزیں, یعنی
وہ جذباتی فیصلہ نہیں کرتے, وہ وقت اور حالات کے مطابق.
انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے جو کہ نواز شریف نے نہیں سمجھا, کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر حکومت نہیں کی جا سکتی, اور یہ بات 100% صحیح ہے کہ آپ اس کے بغیر نہیں چل سکتے. نواز شریف نے کئی ایسے اقدامات کیے جو अगेंस्ट जाते थे एस्टेब्लिशमेंट के, और एस्टेब्लिशमेंट की वजह से सबको सबको मालूम है कि उनकी हुकूमत गई। वजीर दाखला एजाज शाह ने खुद कहा कि नवाज शरीफ अभी भी वजीर आजम होते अगर वो दो स्टेप ना लेते। दो स्टेप का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन एक स्टेप का उन्होंने कह दिया था, वो वही था कि अगर वो मुशरफ के खिलाफ मुकदमा कायम ना करते। तो इससे जाहिर होता
है तो रिवील कर दिया सिरिल मीडिया ने अपनी वो डॉन लीक्स की।
हाँ बिल्कुल,
उन्होंने कह दिया कि वो उन्होंने सिविलियन गवर्नमेंट ने जरा थोड़ी सी थोड़ा सा ठोका है उनको कि भाई आप ये गलत हरकतें क्यों करते हैं।
वही कह रहा हूँ ना, वो कोशिश इन्होंने की थी। जाहिर है आप ये देखे ना कि 18-20 साल पहले जो नवाज शरीफ का 12 अक्टूबर का जो कुछ हुआ, सारे मामलात हुए, वो एक अलग बहस है क्या कौन सही है। इस वक्त हम बात नहीं कर रहे, बात यह है कि उनके जहन में ये एक ग्रज था कि अगर कभी मुझे इख्तदार मिला या अख्तियार मिला और ऐसी सिचुएशन आई तो मैं ये जरूर करूंगा। तो उन्हें उनके 4-5 किचन कैबिनेट के साथियों ने उकसाया, उन्हें उनके उकसाने पे नहीं आना चाहिए था उन्हें।
मुझे एक बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी, वो जो इंटरव्यू था सलीम साफी का 2 दिन पहले।